ओम शांति। बाबा की याद की सुंदर स्मृति तिलक हमारे ललाट पर सुशोभित हो रही। आत्म स्मृति में स्थित हो, परमात्मा की याद में डूबने के लिए ही हम आए हैं। तो चलिए सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, डॉक्टर प्रताप भाई जी, सुमन बहन जी, शांता दीदी जी पटियाला, सरिता बहन जी आगरा, संजय भाई जी, आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी प्यारे बाबा की याद के साथ अपनी सुंदर यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप आए हैं यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। स्वागत करते हैं आप सबका। आज शुक्रवार है, दिल से आप सभी का अभिनंदन बारंबार है, बारंबार है, बारंबार है। सुंदर गुलदस्ता बाबा के घर में आया है, सोनीपत है, चंडीगढ़, पंचकुला, पटियाला, आगरा, असम और बिहासा का भी बहुत प्यारा सा ग्रुप, तो पूरा ही सुंदर गुलदस्ता सजा हुआ है। बाबा भी ऊपर से देख करके आप सबको प्रसन्न हो रहे होंगे और हम सब मधुबन निवासी भी, ज्ञान सरोवर निवासी, आप सबको यहाँ पाकर बेहद बेहद आनंदित हैं। तो आदरणीय दीदी की ओर से, सभी मधुबन ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से एक बार पुनः आप सभी का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। मम्मा का मास है, विशेष मास में आप पधारे हैं। मम्मा हमारी तपस्विनी, योगिनी, जगत जननी, हम सबको प्रेरित करने वाली कि हम सब भी उनके समान ही सबसे पहले संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। मम्मा की तपस्या और साधना ने ही उन्हें सबसे पहले कर्मातीत बनाया और ये मास हम सबको प्रेरित कर रहा है और हमें भी एक सुंदर अवसर मिला है भट्टी का कि हम भी अपने आप को अपने माता पिता के समान संपन्न और संपूर्ण बनाएं। सचमुच कितने लाखों ब्राह्मण हैं और सभी की ये कामना होती है कि हम मधुबन घर में आएं। उन लाखों में से भी चुन करके बाबा ने आपको यहाँ बुलाया है, तो आप कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में भी कोई हो गया ना, तो अपने भाग्य पर एक बार प्रसन्नता। तो हम सब तो बेहद प्रसन्न हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी को कि वो मंच पर आए। हम सब जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी का स्वागत करते हैं। तो हम सब तो आपको यहाँ पाकर के बेहद आनंदित हैं, खुश हैं। आप सब मधुबन में आकर कितने खुश हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? बस इतना ही, बस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये आवाज बाबा तक भी पहुंच रही है और सचमुच हर एक दिल बहुत बहुत खुश है, बहुत बहुत आनंदित है और इसी खुशी में हंसते खेलते नाचते अंतर्मुखी रहते हुए हमें गहन तपस्या करते हुए आगे से आगे बढ़ना है, इसी लक्ष्य से आप पधारे हैं। तो आपके अभिनंदन के लिए सुंदर स्वागत गीत लेकर हमारे बीच नितिन भाई आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं नितिन भाई स्वर का जैसे वरदान है बाबा की ओर से। बाबा के बहुत सारे गीत आपने गाए हैं, बनाए भी हैं और हमेशा ही जब भी ग्रुप आते हैं शुरुआत आप सुंदर स्वागत गीत से करते हैं। तो नितिन भाई हमारा स्वागत करें, उससे पहले हम जोरदार करतल ध्वनि से नितिन भाई का स्वागत करते हैं।
ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है। स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आदि वाले दिन बाबा फिर से हमें दिखाते हैं, 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में कराते हैं। बज रहे विनाश के हैं उधर नगाड़े, दिख रहे इधर है नवयुग के नजारे। अग्रिम दल के रत्नों का तप रंग लाया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अंतर्मुख हो आओ हम योग का करें प्रयोग, मनसा सेवा सकाश में मिलके करें सहयोग। शांत और एकांत मिला तप का ये मौका है, उड़ो पंछियों उड़ने से अब किसने रोका है। वाह बाबा वाह ड्रामा दिल ने अब गाया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ऐसी भट्टी हो जो यादगार बन जाए, और भट्टी की कोई दरकार ना रह जाए। योग भट्टी की ज्वाला आओ ऐसी जलाए, संसार से पुराने संस्कार सब जल जाए, निर्विघ्न रहने करने का मौसम आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है, स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई, सुंदर शब्द आपके गीत के, ऐसी यादगार भट्टी करें जो, ऐसी यादगार भट्टी करें जो और किसी भट्टी की दरकार न रह जाए, और 14 वर्ष की जो तपस्या है वो 4 दिन में करेंगे ना, हो सकता है 14 वर्ष की तपस्या 4 दिन में, इतनी इंटेंस हमारी तपस्या हो, इतनी गहन हो। बाबा ने कहा भी है, एक वर्ष की जो तपस्या है, एक वर्ष का जो पुरुषार्थ है, तुम एक दिन में भी कर सकते हो। वो कैसे, वो अब हमें करके दिखाना है, क्योंकि वक्त कितना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे ये संभव हो, और अगले 4 दिन हम किस लक्ष्य से भट्टी करें जो यादगार बन जाए, 14 वर्ष की जो साधना है वो हम 4 दिन में कर लें और इतने भरपूर होकर जाएं जो देखकर लोग कहें कि सचमुच ये कुछ करके आए हैं, बनकर आए हैं। तो भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुमन बहन जी को। सुमन बहन जी बाल्यकाल से ही बाबा के ज्ञान में, अपना ग्रेजुएशन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने के बाद आपने अपना पूरा जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। एजुकेशन विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और विश्व भर में यात्रा करते हुए बाबा का ध्वज फहराती रहती हैं। मैं इनके लिए यही कहूंगा कि कहते हैं जीवन जीने के 2 तरीके हैं, रहो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। अपने नाम के अनुरूप ही आप सबको सुमन बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। बाबा भी हमें कुमन से सुमन की ओर ले चल रहे हैं और सतयुग में सभी सुमन ही होंगे, तो आप हम सबको प्रेरित करती हैं, अपने दिव्य गुणों की खुशबू से सबके जीवन को महकाती हैं। आपका यज्ञ में होना, ज्ञान सरोवर में होना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और आपकी पूरी भट्टी का सुंदर आयोजन आदि से अंत तक आप ही करती हैं, तो आपके लिए मैं कहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से ऐसी महान विभूति का, जो हम सबके कल्याण के लिए उन्नति के लिए इतनी प्रयासरत रहती हैं, स्वागत करते हैं और आमंत्रित करता हूँ भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को हम सबके सम्मुख रखें आदरणीय सुमन बहन जी।
ओम शांति। मंचासीन आदरणीय प्रताप भाई जी, आदरणीय शांता बहन जी, सरिता बहन, संजय भाई, रुपेश भाई, और सभा में उपस्थित चंडीगढ़, पंचकुला, आगरा, पटियाला और विहासा के ग्रुप जो यहाँ पधारे हैं, आप सभी का बाबा के इस घर में, ज्ञान सरोवर में, आपके ही घर में स्वागत है, शुभ स्वागत है, स्वागत है। आप सभी बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर के यहाँ पधारे हैं 3 दिन अखंड तपस्या करने के लिए। आप सभी इतने भाग्यशाली हैं। वैसे तो हर बाबा का बच्चा सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली है, लेकिन उनमें से आप थोड़ा सा ज्यादा पद्मा पदम भाग्यशाली है ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि आप सभी को यहां आकर के तपस्या करने का बहुत सुंदर चांस मिला हुआ है। वैसे भारतवर्ष के सभी बाबा के बच्चे इस धरा पर पांडव भवन में या ज्ञान सरोवर में आकर के तपस्या करने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत गिने चुने आत्माएं हैं जिनको यहाँ चांस मिलता है इस यहाँ आकर के तपस्या करने का। तो ऐसे अति भाग्यशाली आप सभी आत्माएं यहाँ पधारे हैं अपना भाग्य और बढ़ाने के लिए, है ना। जो अभी भाग्य मिला हुआ है इससे तो संतुष्ट नहीं है। बाबा कहते हैं हर घड़ी हर कदम अपने भाग्य को बढ़ाते रहो, तो और ही अपना भाग्य बढ़ाने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। ऐसे अखंड तपस्या करके अपने अंदर सर्व शक्तियों का सर्व गुणों को भर करके बाबा की इच्छाओं को उम्मीदों को हम जरूर पूर्ण करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो हमें बहुत करने की जरूरत होता है। आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बातें कही। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन जो है वो सुखमय जीवन है। जिंदगी जीना किसको कहा जाता है? जब हम सुख का अनुभव करते हैं वो फिर कहा जाता है वो जिंदगी हम जी रहे हैं। जिंदगी को काट नहीं रहे हैं लेकिन जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम केवल इस संगम युग में ही कर सकते हैं। पूरे कल्प में ऐसा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कभी भी कर नहीं सकते हैं। तो यहां अभी मौका है वो सुंदर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए। लेकिन दूसरी भी बात बाबा ने आज मुरली में कहा कि बेहद का वैराग्य रखना बहुत जरूरी है। पूरा जो संसार है वो कब्रिस्तान है और कहां जा रहे हैं हम? परिस्तान में जा रहे हैं। तो कब्रिस्तान के रूप में अगर देखते हैं तो पूरे दुनिया से हम वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो तपस्या करने के लिए भी यही नींव है, बेहद का वैराग्य। बाबा ने बहुत सारे मुरलियों में तपस्या की परिभाषा अलग अलग रूप से बताई हुई है। तपस्या माना बेहद का वैराग्य, तपस्या माना एकाग्रता, तपस्या माना बाबा में ऐसे लवलीन हो जाना, तपस्या माना पूरे संसार को भूल जाना, है ना। तो उस तपस्या में बाबा के ऐसे प्रीत का अनुभव, प्यार का अनुभव हम जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि अभी तक अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, साधारणता में अगर है तो फिर तपस्या अखंड तपस्या नहीं हो सकता, वो गहरा वो डेप्थ नहीं हो सकता उसके अंदर। तो इसीलिए अपने को लक्ष्य देने की जरूरत है, ये 3 दिन मुझे क्या करना है। क्योंकि आपके लिए जो शेड्यूल बनाया गया है बहुत सुंदर बनाया हुआ है, जो महारथी भाई बहनों का क्लास आप सभी को मिलेगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ अपना लक्ष्य भी दृढ़ रखना बहुत जरूरी है। इन 3 दिनों में क्या करना है? कोई भी ऐसा संस्कार आप चूज करें तो बहुत काल से आप मेहनत कर रहे हैं उस पर विजय पाने के लिए, उसको भस्म करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे, पुरुषार्थ कर रहे होंगे, लेकिन अभी वो समय है, संगठन की शक्ति का बल है, स्थान का सहयोग है और महारथी भाई बहनों का भी सहयोग है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा कड़ा संस्कार जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प करते हुए बाबा को अर्पित करें और जरूर इन 3 दिनों में आप उस कड़े संस्कार से आप जरूर विजय पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अंतर्मुक्ता के गुफा में जाकर के ऐसे तपस्या करने की जरूरत है। तपस्या करने के लिए सबसे जरूरी बात है साइलेंस। साइलेंस में ऐसी शक्ति है जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल बात भी बहुत सहज हो जाता है। तो इसीलिए साइलेंस की अनुभूति करने की जरूरत है, मौन। तो 3 प्रकार के मौन हमें रखने की जरूरत है, 3 M का मौन हम कहेंगे, वो रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है मुख का मौन, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शक्ति नष्ट होता है बोल के द्वारा, जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारी शक्तियां उतना बच जाता है। आप यहां 3 दिन यहां आए हुए हैं और लगता है कि मधुबन निवासियों से मिलना है और सभी इतने सालों के बाद यहां मिल रहे हैं, सभी अपने परिवार से, अलौकिक परिवार से मिलना है, तो बातें तो जरूर होगी, पूरी तरह साइलेंस तो नहीं रख सकते हैं, पूरी तरह मौन तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो सके मैक्सिमम हम मौन रखने का लक्ष्य रखें। और जहां बोलना है कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं विस्परिंग वॉइस में, बहुत ही धीमे वॉल्यूम बहुत ही कम, जिनके साथ हमारा काम है उन तक ही वो आवाज पहुंचे। ऐसा नहीं यहां बैठे इन सब एक व्यक्ति से बात करें लेकिन वहां तक मेरी आवाज सुनाई दे, ऐसे बिल्कुल नहीं, है ना। वातावरण एकदम अव्यक्त बना के रखेंगे, जहां जरूरी है 4 शब्दों से अगर बोलना है, 1 शब्द से अगर हो जाता है तो वो इतना कम, जो आवश्यक है वही बोलेंगे और फिर वॉल्यूम बहुत ही कम रखेंगे और अव्यक्त बाप दादा जैसे बोलेंगे, है ना। फरिश्तों के बोल, फरिश्ते तो वैसे बोलते नहीं है, उनके तो इशारे से उनका लेन देन हो जाता है, लेकिन जब हम बोलेंगे अव्यक्त रूप से एक दूसरे से बात करेंगे। और दूसरे प्रकार का मौन है मन का मौन। मन का मौन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां हमारी दृष्टि जाती है, जहां हमारा अटेंशन जाता है, वहां हमारे मन की शक्तियां भी नष्ट होने लगता है। बाजू वाला क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, तो इसमें अगर ध्यान जाता है तो फिर मन भटका ना। तो तपस्या माना एकाग्रता, एकाग्रता माना मन का मौन, मन का मौन माना जो मुझे करना है उसी के बारे में सोचना है। और पूरी तरह जब यहां क्लासेस होते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हम यहां उपस्थित रहेंगे, है ना, कि पूरा दिन यहां क्लासेस रहेगा लेकिन स्थूल रीति से तो यहां बैठे रहेंगे लेकिन मन से चक्कर लगा के आना नहीं है, लेकिन यहां उपस्थित रह करके मेंटली भी जो भी यहां महावाक्य उच्चारते हैं, जो भी यहां क्लासेस होते हैं, बहुत सुंदर प्रेरणाएं आप सबको मिलता है। उसमें ये भी संकल्प ना हो कि फलाने भाई का क्लास होना चाहिए था, फलाने बहन का क्लास होना चाहिए था। किसको संकल्प है, अपना शेड्यूल देख करके किसको संकल्प आया है, फलाने भाई का क्लास नहीं है, इसमें फलाने बहन का क्लास नहीं है, ये भी व्यर्थ संकल्प नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ आए हुए हैं किसके प्लान के अनुसार आए हैं? अब अपने प्लान के अनुसार आए हैं या बाबा के प्लान के अनुसार आए हैं? बाबा आपको लेके आए हैं यहाँ, तो बाबा के प्लान के अनुसार आप सभी यहाँ आए हैं, और बाबा को पता है आपको क्या देना चाहिए, है ना? तो सभी भाई बहन जो यहाँ स्पीकर्स होंगे उनके द्वारा आपको जो मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। इसलिए कोई भी प्रकार के नकारात्मक या फिर व्यर्थ संकल्प बिल्कुल ना करें। ओपन माइंड से अगर बैठते हैं, बाबा को जो देना है आपको जरूर देंगे और आत्मा को भरपूर करेंगे। तो इसीलिए मन का मौन रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा कौन सा मौन है? सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल का मौन हो सकता है? मोबाइल का मौन हो सकता है? हाँ, जब से आपने मोबाइल खरीदा है तब से कभी भी आपने मोबाइल स्विच ऑफ किया है? एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए भले आपने स्विच ऑफ किया है, लेकिन तीन दिन के लिए आपने कभी स्विच ऑफ किया है? एक चैलेंज के रूप में करके देखना, तीन दिन जरूर आप मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा अटेंशन मोबाइल पर जाता है। कोई अगर काम नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, फटक से ध्यान कहाँ जाता है? मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया है, व्हाट्सएप तो नहीं आया, भले कॉल नहीं आया लेकिन कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया तो ब्राउजिंग करना शुरू कर देंगे, समाचार देखना शुरू करेंगे, तो वहां फिर टाइम वेस्ट हो जाता है ना? तो भले वो जो भी कारोबार है, आप बाद में जब वापस जाएंगे जरूर आप कारोबार करेंगे, लेकिन यहाँ आज जब रात को सोने जाएंगे, जिनको भी आपको इन्फॉर्म करना है, यहाँ पहुंच गए हैं आराम से, तो जिनको भी इन्फॉर्म करना है या किसी से भी बात करना है, कारोबार करनी है, तो आज रात तक सब कुछ पूरा करके सोने से पहले ये निवेदन रहेगा, आप सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे तो सैटरडे संडे मंडे तीन दिन स्विच ऑफ रहे। और आपका मोबाइल कब ऑन होगा? ट्यूसडे मॉर्निंग मुरली क्लास के बाद। तो आप करके देखेंगे, बहुत सुंदर आप सभी को अनुभव जरूर होगा, क्योंकि आपका लाइन बाबा को फ्री मिलेगा, है ना? नहीं तो हमेशा बाबा को अगर कनेक्ट करना हो आपके साथ, हमेशा आपका एंगेज मिल रहा है, मोबाइल के साथ आप एंगेज है या लोगों के साथ आप एंगेज है, तो बाबा को जो देना है देने के लिए आप फ्री मिल ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए तीन दिन आप फ्री ही फ्री है, बाबा के लिए आप फ्री है, अपने लिए फ्री है, तो इसीलिए तीन दिन केवल किसके साथ रहना है? अपने साथ रहना है और बाबा के साथ रहना है, बस, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, ना व्यक्ति है ना मोबाइल है, ठीक है? अपने साथ समय बिताना है और बाबा के साथ समय बिताना है। आप करके देखेंगे तो बहुत सुंदर आप अनुभव करेंगे। और जो जैसे कहा गया था 14 साल की भट्टी जो है वो तीन दिनों में आप जरूर अनुभव कर सकते हैं, और ऐसा यादगार भट्टी आपके लिए सिद्ध हो सकता है कि वापस जब जाएंगे तो जरूर आप महसूस करेंगे, तो बार बार ऐसे भट्टी होता रहे और बार बार आप सभी भट्टी के लिए आते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को फिर से बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी, आपने एक चैलेंज दिया है। किस किस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, जरा हाथ उठाएं, जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, बहुत सुंदर। सचमुच आपका मोबाइल भी ये सोचता होगा कि मेरा मालिक मुझे कभी आराम ही नहीं देता, जब से लिया है लगा हुआ है, घिसता ही रहता है, कभी ऊपर खींचता है, कभी इधर खींचता है, तो बेचारा परेशान होता होगा। तो 3 दिन उसे हम आराम दें, राइट। एक चैलेंज है, पहले मोबाइल नहीं थे तब भी तो हम काम किया करते थे। और महत्वपूर्ण बात बहन जी ने कही कि बाबा हमें कुछ देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम इंगेज हैं तो उसे रिसीव नहीं कर पाते। क्यों ना सुंदर अनुभव किया जाए, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी आश क्या है, उसे रिसीव करने का, उसे गहराई से फील करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर प्यारे बाबा ने दिया है। पूरे जीवन हमने बात की है लोगों से और करेंगे, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन क्या ये 3 दिन केवल भगवान के साथ बिताया जा सकता है? हमारे लिए सुंदर अवसर है, जो ओटे सो अर्चन। हम दीव गए थे, वहां से रिटर्न आ रहे थे, तो एक जगह पर हम रुके, वहां एक संत साधना कर रहे थे, मंदिर वालों ने बताया, और वो पूरे साल अंडरग्राउंड रहते थे, पूरे साल केवल भोजन उनको दे दिया जाता था और पूरे साल अंडरग्राउंड रह के मौन साधना। मुझे लग रहा था कि संसार में भी कैसे कैसे साधक हैं, तपस्वी हैं, उन्हें क्या प्राप्ति होती है क्षणिक। एक व्यक्ति पूरे साल मौन रहकर अंडरग्राउंड रह के साधना कर सकता है, हम क्या 3 दिन पूरी तरह अंडरग्राउंड रह के साधना नहीं कर सकते? हमें सोचना है। महत्वपूर्ण समय, ऐसा पल जबकि हमें खुद को सजाना संवारना है। आइए अब आपको आगे लिए चलता हूं शुभकामनाओं के लिए आदरणीय शांता दीदी जी की ओर, जो पटियाला से हमारे बीच हैं, प्यारी मिठू दादी जी जो 5 चिड़ियाओं में से एक थे, उनके अंग संग आप रहे हैं, उनकी पालना आपने प्राप्त की है, अपने नाम के अनुरूप ही आप बहुत शांत चित्त हैं, सभी को मातृवत पालना देती हैं और साथ ही ज्ञान योग में सबको प्रवीण बनाती हैं। ऐसी अन्नपूर्णा देवी जो वहां अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रख्यात हैं, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शांता दीदी जी से कि इस भट्टी के लिए अपनी शुभकामनाएं हम सबको प्रदान करें।
ओम शांति। प्रभु प्यारी, प्रभु स्नेही, प्यार के रंग में रंगी हुई आत्मा, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम सब ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो अपना समय निकाला और समय निकाल कर यहाँ पहुंचे हो। अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए, भट्टी करने के लिए, भट्टी माना तपस्या त्याग। जब भट्टी जलती है तो उसका सेक चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे आप सबकी भी ये भट्टी है जिस भट्टी का सेक चारों तरफ आपके चेहरे के द्वारा भी दिखाई दे कि हाँ कोई भट्टी करने गए थे और भट्टी करके जब वापिस आए हैं तो इनके चेहरे चमक रहे हैं। इनके मुख के द्वारा बहुत शुभ बोल निकल रहे हैं। जब ऐसा दूसरे अनुभव करें तब हम सोचेंगे कि हम भट्टी करके निखर के आए हैं, अपना जीवन निखार के आए हैं। तो ऐसा जीवन जब हमारा बन जाता है तो उस जीवन पर परमात्मा भी कुर्बान जाते हैं। परमात्मा तुम पर कुर्बान है, लाखों करोड़ों अरबों आत्माओं में से आप सबको चुना है। आप कितने भाग्यशाली हो, कितने तकदीरवान हो, जिसकी छत्र छाया भगवान की छत्र छाया आपके सिर पर है, और इंसान क्या चाहता है, आज यही चाहता है बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, बड़ों की आशीर्वाद मिलता रहे, वो आप सबको मिल रहा है। तो सब आपको देखकर इतने खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, उनका भी दिल करे कि हम भी भट्टी करने जाएं, ऐसी भट्टी करके आए, अपना जीवन तो निखरे और अनेकों का जीवन भी निखर जाए, यही हमारी शुभ भावना है, शुभ कामना है। सदा आप उड़ते रहो, उड़ाते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो, मेरी यही शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया दीदी, आपका हमारे बीच में होना ये भी हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि दीदी मम्मा बाबा की पालना में पली हुई हैं, तो ऐसी विशेष रत्न हमारे बीच अगले 3 दिनों तक रहेंगी, तो उनके भी तपस्या के वाइब्रेशन, उनकी भी सुंदर प्रेरणाएं, उनकी भी दृष्टि हमें प्राप्त होगी, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शांता दीदी आपका। हाँ, आज आप खुल के ताली बजा सकते हैं, क्योंकि कल से तो 3M का आपको सुंदर सुमन बहन जी ने एक लक्ष्य दे दिया है मौन का, तो आज आप करतल ध्वनि से आनंद ले सकते हैं। कल से आप एक हाथ की ताली बजाएंगे। कैसे बजाते हैं एक हाथ की ताली? चलिए अब इस एक हाथ की ताली के साथ मैं लिए चलता हूं आपको आगरा की ओर, हमारी सरिता बहन जी, सरिता जो प्रवाहित होती रहती है और सभी को निर्मल करती रहती है, लक्ष्य केवल सबका कल्याण करते हुए सागर से मिल जाना और औरों को भी सागर से मिलाना। उत्तराखंड में भी आप प्रवाहित हुई, राजस्थान में भी प्रवाहित हुई, अब यूपी आगरा सिकंदरा में रहते हुए आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पिछले 35 वर्षों से बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं और महिला प्रभाग की आप आगरा सब जोन की कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सरिता बहन जी से कि अपनी शुभकामनाएं हम सबको भट्टी के लिए प्रदान करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मानीय मंचा सिंह, आदरणीय प्रताप भाई जी, शांता बहन जी, सुमन बहन जी और रूपेश भाई जी, साथ में संजय भाई जी, आप सभी सामने बैठे हुए भाई बहनों का बाबा के घर में ज्ञान सरोवर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली कहेंगे कि हम सभी को ज्ञान सरोवर में भट्टी करने का चांस मिला। हमने देखा कई भाई बहनों की 4 महीने पहले टिकट बनी थी, लेकिन वो एंड टाइम पर उनका आना कैंसल हो गया, और जिसको बहुत दिल से था कि मुझे जाना है ज्ञान सरोवर, और वो बाहर यहाँ पहुँच गए। और हम सभी को जो लक्ष्य मिला है भट्टी का, तो उस भट्टी का जो लक्ष्य मिला उस अनुसार हमको चलना है। ऐसे नहीं सोचना कि कहाँ हमें जगह मिली, कैसा स्थान मिला, जो भी मिला जैसा भी मिला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमें अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनानी है, और हमारी स्थिति अच्छी तब बनेगी जितना हो सके डिटैच, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। जितना हम डिटैच होंगे उतना ही हमारा परमात्मा से क्या होगा, अटैच होंगे। हम सभी को लक्ष्य मिला है कि 14 साल की जो भट्टी प्राण प्यारे बाबा ने हम दादियों को दीदियों को कराई थी, वो भट्टी तो हमने नहीं की, लेकिन जो हमें 3 दिन यहाँ रहने का चांस मिला है उस भट्टी का हमें अनुभव करना है। और कैसे करेंगे, जितना हो सके त्याग तपस्या, त्याग तपस्या, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई बुद्धि में नहीं रखना है। यही लक्ष्य रखना है कि हमें 1 साल के लिए, 1 साल के बाद यहाँ आते हैं तो इतना हम अपनी बैटरी को फुल चार्ज करें जो पूरी साल हमारे काम आए। क्योंकि जैसे सीजन होता है ना, तो सीजन में हम क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं सारी चीजों का, जिस सीजन का समय चलता है। तो अभी हम सब के लिए ये सीजन है कमाई करने का, कहीं बुद्धि को नहीं ले जाना है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, इस लक्ष्य को सामने रखते हुए हमें भट्टी करनी है। यही हमारी शुभ प्रेरणाएं हैं इस भट्टी के लिए, और सभी अपना विशेष अटेंशन इस भट्टी पर रखेंगे, अपनी जो भी दिनचर्या यहाँ से मिली हुई है उसी अनुसार चलेंगे, कौन क्या कर रहा है, और हमें किसी को नहीं देखना है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया सरिता बहन जी। केवल मैं और मेरा बाबा। एक प्रेमिका थी, उसका प्रेमी बहुत वर्षों के बाद नगर में आ रहा था व्यापार करके। जैसे ही उस प्रेमिका को खबर मिली, वो दौड़ी उससे मिलने के लिए, बहुत तेज दौड़ी। उसे सुदबुद्धि नहीं था। रास्ते में एक बादशाह थे, शायद नमाज पढ़ रहे थे बिछा करके अपनी चादर, उसे भी ठोकर मारते हुए वो बागी जा रहे थे। जब वो रिटर्न आ रहे थे तो उस बादशाह ने कहा, मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुमने मुझे ठोकर मारी, मेरे चादर पर पैर रखा, ऐसी गुस्ताखी की तुमने। उसने बहुत प्यारी सी बात कही, आप ईश्वर की इबादत कर रहे थे, ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, फिर भी ईश्वर से ध्यान हट करके आपका ध्यान मेरी ओर आ गया, और मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य के प्रेम में पागल थे और मुझे केवल वही दिखाई दे रहा था। अब आप ये बताएं कि आपका प्रेम ज्यादा बड़ा है या मेरा प्रेम। ऐसे प्रेम में डूबना है कि बस हमें हमारा प्रियतम ही दिखाई दे, बस उसी के अंग संग रहें, जो वायदा है हमारा कि तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं, ये 3 दिन तो हम ये जरूर करें कि उस प्रियतम के अलावा और कोई दिखाई ना दे। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं हम सबके अति सम्मान्य, अति आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रताप भाई जी की ओर। कुछ ऐसी आत्माएं हैं हमारे यज्ञ में जो अपने जीवन से, अपनी उपस्थिति से सेवा करते हैं। आदरणीय भ्राता जी उनमें से एक सेवा, सादगी, सरलता की प्रतिमूर्ति हैं आप। इतने विनम्र कि ऑलवेज अवेलेबल, बहुत सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए भी ऑलवेज अवेलेबल,
और बहुत प्यार से विनम्रता से सबको अटेंड करना, सबकी सेवा करना, सबका ख्याल रखना। हम सब समर्पित भाई बहने, सेवाधारी भाई बहने, हमारी सारी सेवा केंद्रों की बहनें जब भी आती बहुत निश्चिंत हो जाती हैं कि भ्राता जी बैठे हुए हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर ट्रस्टी, जब शुरुआत हुआ ग्लोबल हॉस्पिटल का 1991 से, तब से बाबा ने आपके सिर पर ताज रखा इसको विस्तार देने का, और आज ये हॉस्पिटल पुष्पित पल्लवित होता हुआ चारों ओर फैलता चल रहा है। मैं हमेशा भ्राता जी को मास्टर वैद्यनाथ कहता हूं। बाबा वैद्यनाथ हैं और भ्राता जी हमारे मास्टर वैद्यनाथ हैं। और वैद्यनाथ के लिए कहते हैं कि लोग तो, मनुष्य तो हर्ट करते हैं लेकिन वैद्यनाथ हील करते हैं। हर्ट करने वालों के साथ हम पूरे जीवन रहते हैं, उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमें हील करता है उसके साथ कितना बिताते हैं। तो ऐसे प्यारे वैद्यनाथ बाबा के साथ साथ हमारे मास्टर वैद्यनाथ डॉक्टर प्रताप भाई जी हम सबके साथ हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपकी शुभ प्रेरणाएं इस भट्टी के लिए हम लेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। आदरणीय शांता बहन और आदरणीय सरिता बहन जी और रूपेश भाई, मैं जब सुन रहा था रूपेश भाई परिचय दे रहे थे तो मैं बाबा को याद कर रहा था कि देखो बाबा ने हमारे जीवन में कितनी विशेषताएं भरी हैं। करण करावन हार तो वही है ना, और उसने हमें अगर सेवा का भी अवसर दिया तो उसको हमारा भविष्य पता था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मधुबन में रहने का चांस मिलेगा, लेकिन देखिए ये भी बाबा की कमाल है और ये बाबा की कमाल से ही हम पल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमारा जो जीवन है वो सबके लिए आईना है और हम अपने जीवन को खुद भी देखते रहते हैं। पर एक सब्जेक्ट जो है हमारी वो है गुण ग्राहकता की, बाबा हमेशा ये कहते हैं। और लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा कि हमारी सोच और कर्म समान हो, क्योंकि हमारे संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ हैं। हमें बाबा से इतनी ऊंची श्रीमत मिल रही है लेकिन हमें पता है कि श्रीमत मिलते हुए सबको वही कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम नंबरवार हो जाते हैं। तो ये जो हम बीच बीच में मधुबन में आते हैं, तपस्या करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ये वही सोच और कर्म में जो गैप है उसको कम करने की बात है। बाबा ने तो यहां तक कहा कि तपस्या को हमें कोई भारी शब्द नहीं बनाना, तपस्या तो जैसे सेलिब्रेशन है हमारे लिए, क्योंकि जितना जितना हम बाबा के प्यार में जाते हैं उतना हम लाइट होते जाते हैं। और भगवान ने हमारे सामने इतने रोल मॉडल रखे हैं। मैं ये सब चित्र देख रहा था, हमारी मीठी दादियां और बड़े भाई, इनके चित्रों को देखें तो इनके चरित्र याद आते हैं। हम सब ने तो यूं कहेंगे कि बहुत भाग्यवान थे, इन सब से पालना ली है, इन सब का जीवन देखा है। तो हमारे लिए इतना ही है कि हम केवल बाबा जैसे कहते हैं फॉलो करें। वो लोग तो आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा, वो लोग तो फॉलोअर नहीं बनते अपने गुरुओं के, लेकिन हम तो बाबा को फॉलो करते हैं। हमारे लिए सब बात बहुत सहज है, दुनिया वालों के लिए मुश्किल हो सकती है लेकिन हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि हमारे सामने रोल मॉडल है, हमारे सामने जीते जागते चरित्र हैं, चित्र हैं, और उन चित्रों के आधार से हम अपने जीवन को संवार रहे हैं। पुरुषार्थ हम बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन जो यहां आना होता है वो जैसे एक कैटलिस्ट हो जाता है। यहां आने से ही जैसे हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना बाकी है। और मुझे भी जब मैं शुरू में आया था, क्योंकि हम लोग जब वहां होते हैं अपने अपने सेवा केंद्र में, तो हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, बाहर में जॉब करते हैं, तो उन सबके बीच में तो हम यूं कहें यूनिक होते हैं, बहुत कुशल होते हैं। लेकिन यहां जब बड़ों को आकर देखते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो हमें पता लगता है कि वहां हम यूनिक थे, लेकिन यहां हमें क्या बनना है, हमें अद्वितीय बनना है, अलौकिक बनना है। वो लौकिक दुनिया में हम विशेष थे, तो यहां ये जो पुरुषार्थ करते हैं और वो जो सोच और कर्म का अंतर है, उसका आधार क्या है, हमारे गुण और हमारी गुण ग्राहकता की दृष्टि। आप सभी ने सुना होगा कि जो भी ग्रुप से उसमें एक विहासा का ग्रुप है, तो आप लोगों के मन में प्रश्न उठा होगा, विहासा क्या है, ये कौन सी नई कहानी है, या नया जोन है, या नया सेवा केंद्र है। बहुत से लोग तो परिचित होंगे। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था यूके से, लंदन से, दादी जानकी की प्रेरणा रहती थी। जानकी फाउंडेशन, उन्होंने अपना नाम दिया था फाउंडेशन को, और ओरिजिनल कंसेप्ट तो था कि हॉस्पिटल की मदद करने के लिए। ग्लोबल हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था तो दादी प्रकाशमणि ने उनको जिम्मेवारी दी थी हॉस्पिटल को सपोर्ट करने की। लेकिन दादी ने सोचा कि फाउंडेशन केवल इतना ही नहीं करे, लेकिन फाउंडेशन को कुछ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सेवा करनी है। तो वहां तो वेस्ट में, पश्चिम में तो क्या होता है, लोगों को बहुत प्रेशर होता है, जॉब प्रेशर होता है, और इतना प्रेशर होता है क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं मेडिकल प्रोफेशन से वैसे भी। तो उन लोगों को क्या मुश्किल होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल छोड़ के मार्क एंड स्पेंसर में जा रहे हैं, बर्नआउट सिंड्रोम हो रहा है, छोड़ रहे हैं। तो दादी ने कहा कि इनकी सेवा की जाए। तो एक ग्रुप बना था जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया। और हम सभी जानते हैं कि हमारा सारा जीवन अनुभव पर ही आधारित है, तो ये सारा कार्यक्रम भी एक्सपीरियंशियल है। इसमें 7 मॉड्यूल्स हैं। पहला तो वैल्यूज पे है, और वैल्यूज में भी खास जो बात शुरू में बताई गई थी कि हम अपने जीवन में कितना स्थिर रहते हैं, कितना अचल रहते हैं। हमें ये तो पता है बाहर की मुश्किलें तो बहुत आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, जिनका आप स्वप्न में भी नहीं सोचते, वो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम कितनी जल्दी उससे अपने आप को बाउंस बैक कर सकते हैं, जिसको वो रेजिलेंस कहते हैं। और उनका आधार क्या है, उसका आधार तो हमारी शांति है, पीस है, पॉजिटिविटी है, कंपैशन है। बाबा जैसे कहते हैं सबके प्रति हम रहम दिल बने, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में, हेल्थ केयर प्रोफेशन में तो कंपैशन की बहुत कमी होती जा रही है, क्योंकि लाइफ बहुत मैकेनिकल हो गई है, टेक्निकल एडवांसेस हो गए हैं वो सब के कारण। तो इस तरह से ये 7 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन जो लास्ट मॉड्यूल है वो हम सबके लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो समर्पित हैं, ईश्वरीय सेवा में हैं, उनको अपनी भी संभाल करनी हो। तो लास्ट मॉड्यूल जो है वो सेल्फ केयर पर है, इसमें कॉपरेशन भी है, टीम वर्क भी है, यानी कि हम सब कुछ करते हुए भी अपने को भी एम्पावर्ड रखें, अपने आप की संभाल कैसे करें। डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि अपनी संभाल भी करें, अपने आप को भी सशक्त बनाएं। दूसरों की सेवा तो करनी है, लेकिन जैसे बाबा भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि सेवा करते हुए भी हमारी स्थिति कैसी है, हम किस स्टेज से गुजर रहे हैं। सेवा की बात नहीं, लेकिन हमारी जो स्थिति होगी, हमारी जो वाइब्रेशंस होंगी, हमारा जो ऑरा होगा, हमारे जो गुणों की खुशबू होगी, वो लोगों तक पहुंचेगी। और आप देखें, कोई भी ब्रह्मा कुमार भाई या बहने जब कहीं भी जाते हैं तो उनमें जो अलौकिकता होती है, भले वो अपना परिचय दे या नहीं दे, लेकिन लोगों को लगता है कि ये विशेष आत्माएं हैं। और उसका आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है हमारे जीवन में? आधार है हमारी साधना, मेडिटेशन। उसके साथ साथ हम जैसे इसमें भी हम लोगों के, लौकिक लोगों के लिए उनके अनुसार मेडिटेशन यूज करते हैं, उनको विजुअलाइजेशन सिखाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में कोई चित्र सामने रखें, वो चित्र भी आपको प्रेरणा देगा। विजुअलाइजेशन है, रिफ्लेक्शन है, एप्रिसिएशन है, उसमें प्लेफुलनेस है, क्रिएटिविटी है, ये सब चीजें यूज करते हैं ताकि उनको गुणों की अनुभूति हो, अनुभव हो। अगर शांति का अनुभव एक बार होगा तो वो अनुभव उनको फिर खींचता रहेगा। तो इसको बड़े सहज तरीके से, और ये प्रोग्राम जो है हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में करवाते हैं हम लोग, छोटे ग्रुप्स में करवाते हैं, 30-40 के ग्रुप में, ताकि लोगों को अनुभूति हो सके, अनुभव हो सके। और फिर ये भी करते हैं कोशिश कि सब लोगों का एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो जिसमें सब लोग हो, डॉक्टर्स भी हों, नर्सेस भी हों, टेक्नीशियंस भी हों, सपोर्ट स्टाफ भी हो, सब लोग हों, क्योंकि सबको मिलकर काम करना है। तो ये इस तरह का जो प्रोग्राम है उसके पीछे लक्ष्य तो क्या है? लक्ष्य तो ये है कि जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ईश्वर से हमें अनुभूति प्राप्त हुई है, वो सबसे शेयर करें। हम ये तो जानते ही हैं कि हमारे जो चारों ही सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, वो सेवा में ही रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हमें अपने चारों ही सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कैसे करना है, और फिर उन लोगों को जिनको बहुत जरूरत है, आपने कोविड के टाइम में भी देखा कितनी मुश्किलों से हेल्थ केयर स्टाफ गुजरे, उस समय भी ऑनलाइन कोर्सेज चलते रहे डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए। तो जिनको जरूरत है, जो दूसरों को दे रहे हैं अपनी सेवाएं, उनकी सेवा करें। बाबा तो कहते हैं ना, डॉक्टर्स और नर्सेज के पास कितने लोग आते हैं, अगर एक की सेवा होगी तो वो अनेकों की सेवा के निमित्त बनेंगे। इससे अनेक प्रकार से कनेक्शन है। तो मैं तो ये समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेवा की अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन साथ साथ अपनी इम्प्रूवमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे इन गुणों को हम प्रैक्टिकल खुद में अनुभव करें, क्योंकि अगर हमारे पास स्टॉक होगा तभी हम शेयर कर पाएंगे। तो कैसे अपने स्टॉक को हम भरपूर करते रहें, हमारी बुद्धि, जैसे बाबा भी कहते हैं ना कि बुद्धि से ज्ञान टपकना चाहिए, तो ज्ञान किस तरह से टपकेगा, चेहरे से कैसे रिफ्लेक्ट होगा, हमारे गुणों से होगा, हमारी रूहानियत से होगा। तो इन गुणों की फाउंडेशन भी स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं हो, बाहर की दुनिया में लोग कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन उसका आधार भी क्या है, हम सब ने समझा है, उसका आधार हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आता है, जो फाउंडेशन है कि हमने इस बात को समझा कि जो कुछ आज हमारे पास है वो सब एक्वायर्ड है, लेकिन जो हमारी नेचुरल इननेट क्वालिटीज है, वो तो आत्मा की क्वालिटी जो है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो उनका अनुभव दूसरों को कैसे कराएं। तो जितना जितना हम उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे, तो दूसरों के साथ शेयर करना भी आसान हो जाता है। और ये सेवा जो है निरंतर चलती ही रहती है, और इस सेवा में जो भी लगते हैं, आप किसी से भी मिलेंगे। मुझे याद है जब मैंने भी इस व्यासा का कोर्स किया था, तो जैसे लगा कि ये एक नया तरीका है सेवा करने का। बाबा भी कहते हैं ना, सबको अनुभव कराओ, तो ये अनुभव कराने की सेवा है, लोगों को महसूस हो कि उनकी ओरिजिनलिटी क्या है, उनके इननेट क्वालिटीज क्या है, उनके गुण क्या है, शक्तियां क्या है। और व्यासा को ये ठीक है, शुरू में ये डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, अपने सेंटर पे, सेवा केंद्र पे भी कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ भी कर सकते हैं, इस कोर्स इस प्रोग्राम को हम जैसे जैसे करते हैं तो हमें लगता है कि इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है। तो यहाँ विहासा ग्रुप में जो भी भाई बहने आए हैं वो सब इन सब के अनुभवी हैं और अभी आपके साथ वो तपस्या के भी अनुभवी बनेंगे। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और बाकी तो जैसे मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य तो यही है कि हमें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है और जीवन में वो करना है जिसका हमने लक्ष्य रखा हुआ है। और हम सब इस बात को तो जानते हैं कि बाबा ने हमें बार बार ये बात ध्यान में दी है कि हमें एवर रेडी बनना है। मुश्किल कब आएगी वो तो पता नहीं, किसी से पूछ के भी नहीं आएगी, अचानक आएगी। तो एवर रेडी और अचानक के पार्ट को पक्का करने के लिए भी ये भट्टी बहुत आपको मदद करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये आने वाले 3 दिन आपके बहुत सफल हों, आप आनंद से और यूं कहें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करें इस भट्टी में, यही मेरा विश्वास है और यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रता जी आपकी शुभ प्रेरणाएं हम सबको तप की गहराई में ले चलने वाले। विहासा का भी आपने सुंदर परिचय दिया, वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच। प्यारी दादी जानकी जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ इसीलिए इतना फल फूल रहा है और आप इसके पोषक हैं, सबके मार्गदर्शक हैं। और सचमुच ये कार्यक्रम डॉक्टर्स के लिए हो, नर्सेस के लिए हो, मेडिकल स्टाफ के लिए हो, मैं कहता हूँ उनके लिए ही नहीं लेकिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैल्यूज की तो हम सभी को जरूरत है। और हम लोग VIP का फुल फॉर्म ही यही कहते हैं ना, वैल्यूज इन पर्सनालिटी। जितने आपके व्यक्तित्व में वैल्यूज आते जाते हैं आप VIP बनते जाते हैं। तो विहासा एक ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम और हम सब भाग्यशाली हैं कि देश भर के जो विहासा से जुड़े हुए इसके फैसिलिटेटर्स हैं, डॉक्टर सचिन परब भी हमारे सामने हैं, कल्पना बहन जी हैं, मैं समझता हूँ दीपा बहन जी भी शायद आएंगे, सुनैना बहन है, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय अभी माउंट आबू में ही प्रवास कर रहे हैं और उनका कार्यक्रम परसों ज्ञान सरोवर में रखा गया है। तो भ्राता जी इन सभी सेवाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा वक्त है वो जब तक हमारे बीच पहुंचते हैं उनके आशीर्वचन हम सब सुनेंगे और साथ ही दीप प्रज्वलन भी होगा। तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच आदरणीय संजय भाई जी हैं। संजय भाई जी जैसे ही ज्ञान में आए वैसे ही आपने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी स्टडी पूरी करते ही बाबा के यज्ञ में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर सेवा करूंगा। और जब ज्ञान सरोवर निर्मित हो रहा था तभी आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और ज्ञान सरोवर की शुरुआत से लेकर के अब तक ज्ञान सरोवर की सुंदर सेवाओं में, विशेष करके रोटी डिपार्टमेंट में आप अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन ज्ञान योग में इतने प्रवीण हैं, इतनी रुचि है आपकी कि बाबा का एक विंग है स्पार्क विंग स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसके आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, बाबा ने आपके सिर पर ताज रखा है रिसर्च का। तो मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय संजय भाई जी से कि अगले 3 दिनों तक हमारा कार्यक्रम कैसा रहेगा और साथ ही किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उस पर सुंदर प्रकाश दें आदरणीय संजय भाई जी।
ओम शांति। आप लोग बहुत सुंदर स्थान पर आए हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण भी है और एक अच्छा लक्ष्य लेकर के आप सब आए हैं। पिछले करीब 2 वर्षों से यहाँ पर साधना के कार्यक्रम चल रहे हैं और इससे ज्ञान सरोवर का वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग के मन में भी अक्सर ये रहा करता था कि यहाँ पर साधनाएं होनी चाहिए। वैसे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो VIP की सेवा को देखते हुए इसको बनाया गया था और काफी सेवाएं यहाँ से हुई हैं, लेकिन हम निवासियों के मन में अक्सर ये एक भाव रहता था कि यहाँ ब्राह्मणों के कार्यक्रम हों तपस्या के, तो यहाँ का वातावरण और भी सुंदर और भी रूहानी और अच्छा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से, बल कोरोना ही निमित्त बना इसके लिए, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो गया है। मुझे लगता है कि ऐसे वातावरण में यदि हम थोड़ा आकर के बैठ भी जाएं तो भी आत्मा को बहुत बल मिलता है, आत्मा ऊर्जावान हो जाती है। और आप सब तो यहाँ साधना के लिए आए हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत सुंदर सुनहरा अवसर है कुछ लेकर के जाने का। समय भी अब कम है, सूचनाएं हमें मिल रही हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा मिल रही हो, विज्ञान के द्वारा मिल रही हो, या जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं बीच बीच में इस देश में या संसार में उसके द्वारा। और बाबा तो कहते ही आए हैं शुरू से ही, तो अब समय की समीपता को देखते हुए हमें तपस्या में लगना है। और अगले 3-4 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए एक बहुत सुंदर दिनचर्या बनाई गई है। और उस दिनचर्या में ये ध्यान रखा गया है कि आपको योग का भी अवसर मिले, ज्ञान की गहराई में जाने का भी अवसर मिले, और आपको विश्राम के लिए भी समय मिले। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक फ्लेक्सिबल दिनचर्या तैयार की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने एजेंडा जरूर पढ़ा होगा, और यदि आपने एजेंडा ना पढ़ा हो तो जरूर आप पढ़ लेंगे उसको विस्तार पूर्वक। सभी बिल्डिंग्स में एजेंडा की एक कॉपी लगाई गई है। यहाँ पर मैं संक्षेप में एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा आपके अगले 3 दिनों की जो भी दिनचर्या रहेगी, कॉमन दिनचर्या है हर रोज की, मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। 3 बजे आपकी दिनचर्या प्रारंभ होगी, आप सब 3 बजे उठेंगे। गीत तो 3:30 बजे बजता है उठने का, परंतु आप सब 3 बजे उठेंगे और उठने के बाद आप लोग तैयार होकर के 3:30 बजे तक यहाँ आएंगे। आपके ध्यान में रहे कि जो भी कार्यक्रम चलेंगे वो सब इसी हॉल में चलेंगे। अगर कोई परिवर्तन बीच में होता है तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, परंतु अब तक के प्रोग्राम अनुसार आपके सारे कार्यक्रम इसी हॉल में होंगे। तो आप सब सुबह 3:30 से 4:45 बजे तक अमृत वेले योग के लिए यहाँ आएंगे, उसके बाद वापस स्नान आदि करके 6 से 6:30 बजे तक आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा। चूंकि सारा दिन आपको बैठे रहना है तो बैठ बैठ करके भी कई बार हम थक जाते हैं, हमारा शरीर अकड़ सा जाता है, तो थोड़ा यदि सुबह में हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर लेते हैं तो सारे दिन हम चुस्ती और फुर्ती के साथ हम साधना कर पाएंगे। हमारे साउंड डिपार्टमेंट के सुरेश भाई जी बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से म्यूजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं हारमोनी हॉल के ये पीछे की साइट में। 6:00 से 6:30 बजे तक आधे घंटे के लिए ये सत्र चलता है, आप सब जरूर उसमें सम्मिलित हों। फिर 6:30 से 7 बजे तक यहाँ पर आएंगे, सबका सामूहिक योग चलेगा। फिर 7 से 8 बजे तक मुरली क्लास, और मुरली क्लास के बाद थोड़े समय के लिए मुरली रिवाइज कराई जाएगी, उसके बाद आप सभी नाश्ते के लिए जाएंगे। वापस 9:30 बजे आप यहाँ आएंगे, 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक सुबह का जो मॉर्निंग सत्र होगा वो चलेगा, जिसमें आपको 2 क्लासेस मिलेंगी हमारे अनुभवी भाई बहनों के द्वारा, योग भी रहेगा। तो इस तरह से आपके सुबह के सत्र की शुरुआत योग से होगी, फिर क्लासेस भी होंगे, बीच बीच में भी योग होंगे। फिर 1 बजे आप यहाँ से लंच के लिए जाएंगे, 1:00 से 4:00 बजे तक पर्याप्त समय है भोजन और विश्राम के लिए। विश्राम करके पुनः 4:30 बजे चाय वगैरह पी करके 4:30 बजे आप यहाँ आएंगे। 4:30 से रात्रि 8:15 बजे तक शाम का सत्र चलेगा। उस सत्र में भी आपको योग और क्लासेस होंगे, करीब 2 क्लासेस होंगी। नौमा शाम का योग होगा 4:30 बजे से 5 बजे तक, गाइडेड मेडिटेशन कोई न कोई भाई या बहन हमको कराएंगे। 8:15 बजे आप सब डिनर के लिए जाएंगे और 8:15 बजे आपकी दिनचर्या यहाँ पूरी हो जाती है और उसके बाद भोजन करके आप लोग अपने अपने ढंग से बाबा के कमरे में जा करके 9 से 9:30 बजे तक गुड नाइट मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पर कई बाबा के कमरे बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर बाबा के कमरे बने हैं। यहाँ पर गार्डन भी है, लॉन्स भी हैं, तो आप आधा घंटा बाबा के कमरे में या जहाँ भी आप बैठ करके चाहें गुड नाइट मेडिटेशन जरूर करें और फिर आप सब विश्राम के लिए जाएंगे। खास इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप देर रात तक जगे नहीं। अगर आपको सुबह 3 बजे उठना है तो जरूरी है कि आप 10 बजे से पहले पहले सो जाएं, वरना कई बार हम जबरदस्ती उठ तो जाते हैं परंतु उठने के बाद भी योग का जो रस मिलना चाहिए वो हम ले नहीं पाते हैं। हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, हम लोग नींद में तंद्रा में इससे ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। बेशक बाबा का घर बहुत सुंदर है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, खाली समय में आप लोग इधर उधर बैठ करके शांत एकांत स्थान में यहाँ की जो खुशबू है, यहाँ की जो रूहानियत है, उसको भी आप जरूर सेंस करें, अपने अंदर उसको भरें, लेकिन दिनचर्या का भी ध्यान रखें, देर रात्रि तक आप जगे नहीं। हमारी दिनचर्या में अमृत वेले योग और नौमा शाम का जो योग है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप सब घरों में भी करते होंगे, परंतु जो वातावरण यहाँ मिलता है, जो शक्ति और संगठन का बल यहाँ होता है अमृत वेले योग का और नौमा शाम के योग का, वो बाहर की दुनिया में नहीं मिल पाता है। हम रोज सेवा केंद्र पर जाकर के तो ये कर नहीं पाएंगे, तो खास ये जो 2 योग के समय हैं उसको आप बिल्कुल भी मिस न करें, इधर उधर न घूमें। घूमने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, पर इन 2 समयों में आप जरूर योग में रहें। लास्ट दिन 6 तारीख को एक विशेष योग का सत्र रखा गया है, 4:30 बजे सायं से लेकर के 7 बजे तक। वो क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, तभी आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जो सत्र है 6 तारीख को शाम का जो सत्र है 4:30 से 7 बजे तक का, ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष होगा। हमारे बीच मृत्युंजय भाई जी आ चुके हैं, एक बार ताली बजा करके भाई जी का स्वागत करेंगे। व्यस्त दिनचर्या होते हुए भी हम सबके लिए आपने समय निकाला और हमारे बीच आए, तो इस तरह से एक छोटा सा ये एक सुंदर योग का बहुत सुंदर सत्र रहेगा। और उसके बाद उसी दिन शाम को 7:30 से 7:30 बजे तक जो दादी जानकी जी पार्क है, बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है, आप में से कईयों ने देखा भी होगा, उसमें आधे घंटे का योग और एक छोटा सा पिकनिक भी रखा गया है। तो आप ओम शांति। तो 6 तारीख को एक छोटा सा पिकनिक रखा गया है, बाबा कहते हैं संगम मौजों का युग है। हमारे बीच भाई जी आ गए हैं, अधिक समय न लेते हुए मैं 5-7 मिनट में इसको वाइंड अप करूंगा। तो उस दिन भी आप सब जरूर उसमें सम्मिलित होंगे और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सुबह जब आप 3 बजे उठते हैं, उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद आप यहाँ योग के लिए आएंगे, पर उससे पहले यदि एक पैराग्राफ आप कुछ पढ़ करके आए, आपके पास साकार मुरली हो, अव्यक्त मुरली हो, या कोई ऐसी बाबा की पुस्तक हो तो योग में सहजता रहती है। जब हम 4-6 घंटे सो करके उठते हैं तो हमारा ब्रेन पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाता है, उसको समय लगता है। तो यहाँ आने से पहले यदि आप एक पैराग्राफ कुछ पढ़ करके उस पर चिंतन करके आते हैं तो योग में हम बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं और योग का सुख ले पाते हैं। तो आप सब इसका भी जरूर ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ एक सूचनाएं भी हैं, इन पर भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सारे कार्यक्रम यहाँ पर ही चलेंगे और अगले 3 दिनों तक आपको पूरी तरह से साइलेंस मेंटेन करना है। बहुत अच्छी तरह से सुमन बहन जी ने इस विषय को लिया और बताया कि हमको केवल मुख का मौन ही नहीं रखना है, लेकिन मुख के साथ साथ मन का मौन और सबसे ज्यादा जरूरी मोबाइल का। तो मोबाइल आज जाने के बाद सोने से पहले आप सब जरूर स्विच ऑफ कर देंगे, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा हमारी साधना में, इसका आपको बल मिलेगा। खास करके हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अमृत वेले आप जब यहाँ योग के लिए आते हैं तो बिल्कुल मौन में रहेंगे। वैसे तो सारा दिन ही रहना है, लेकिन कई बार ये देखने को आता है कि लोग अमृत वेले बहुत कोई चप्पल की आवाज, चप्पल घसीटते हुए आते हैं, कई आपस में बातें भी करते हुए आते हैं, तो इससे वातावरण को काफी डिस्टर्बेंस महसूस होता है। तो आप सब जरूर जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके भोजन की जो व्यवस्था है वो नीचे के डाइनिंग हॉल में, ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारे डाइनिंग हॉल्स बने हैं वहाँ पर आपके भोजन की व्यवस्था रखी गई है, और जो टीचर्स बने हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था बीच के फ्लोर में डाइनिंग हॉल नंबर 5 में रखी गई है। सुबह और शाम के लिए जो चाय की व्यवस्था है वो भी बीच के फ्लोर पर ही रखी गई है। एक और विशेष बात कि आप सब जितना हो सके इस भट्टी के दौरान यदि आप सफेद वस्त्र लेकर के आए हो तो उन्हें ही धारण करें, वस्त्र की भी अपनी एक शोभा होती है, उसका भी वातावरण पर एक प्रभाव होता है। तो जरूर आप सफेद वस्त्र धारण करें। और उससे भी महत्व की बात यह है कि जब भी हम कमरों से बाहर निकलते हैं तो मर्यादित वस्त्रों में ही निकलें, ये बहुत जरूरी है। ये दिव्य अलौकिक स्थान है, इसकी गरिमा को बना के रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई बहने या आलस्यवश कहें या जो भी कहें, जल्दी जल्दी में सुबह नाइट ड्रेस में ही चाय पीने आ जाएंगे, नाइट ड्रेस में ही सड़कों पे वॉकिंग करने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है देखने में। हम सब बाबा के देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं, तो जब भी हम कमरे से बाहर निकलें हम मर्यादित वस्त्रों में ही बाहर निकले। आपको बैजेस मिले होंगे, आप उन्हें जरूर पहन करके रखें और जब आप वापस जाएं उन बैजेस को जरूर रिटर्न करें। और एक चीज ध्यान रखें कि उन बैजेस के ऊपर कुछ लिखे ना, क्योंकि एक बार यदि आप कुछ लिख देते हैं तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते। तो बैज के ऊपर आप कुछ भी न लिखें, और खास टीचर्स बहनों से और गाइड भाई बहनों से ये अनुरोध है कि यदि आपको वापसी के लिए यात्रा भोजन की जरूरत हो और रिटर्न ट्रांसपोर्ट की जरूरत हो तो आप सब कम से कम 24 घंटा पहले जरूर सूचना दें कंसर्न डिपार्टमेंट को। सुबह अमृत वेले योग के बाद खास करके माताएं बहनें यदि 10 मिनट के लिए आप सब्जी काटने में सहयोग दे सकें तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे लिए। बड़ा ग्रुप है, रेगुलर सेवाधारी कम है, तो अगर आप थोड़ा 10, वैसे भी आप एक साथ कमरे में जाएं तो बाथरूम खाली मिलते नहीं है, वहां बैठना ही पड़ेगा, तो 10 मिनट भी यदि आप सब्जी काटने में सहयोग दे देते हैं तो हमारे रेगुलर सेवाधारी भाई बहनों को थोड़ा समय आपके साथ साथ ज्ञान योग का मिल जाता है। तो जरूर आप इसमें भी अपना सहयोग देंगे। और अभी खास करके यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, गर्मी का समय चल रहा है, तो पानी जितना कम से कम यूज करें उतना अच्छा होगा। हमारे पास पानी बाहर से टैंकर से मंगाया जा रहा है, तो आप लोग पानी बहुत कम यूज करेंगे। और एक लास्ट सूचना, रात्रि के समय में अंधेरा होने के बाद आप लोग कैंपस के बाहर ना जाएं। ज्ञान सरोवर जंगल के बीच में बसा हुआ है, यहाँ पर खास करके भालू और चीता ये दो जानवर बहुत होते हैं और रिस्क रहता है। बाबा का घर बहुत बड़ा है, आप घर में ही वॉकिंग करें, घूमे फिरें। अंधेरा होने के बाद कृपया, या सुबह भी जब अंधेरा हो तो आप वॉकिंग के लिए गेट से बाहर ना जाएं। तो जरूर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 3 दिनों तक आप बहुत अच्छी साधना करें, और हमारी सब भावना है कि आप आए हैं तो बाबा के घर से भरपूर होकर के जाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, सुंदर दिशा निर्देश जो हमारे लिए हैं वो आपने प्रदान किए। भ्राता जी हमारे बीच है, मैं कहूंगा वो आ गए जिनका इंतजार था, आए खुशी के दीप जला लें और भ्राता जी के स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा लें। और साथ ही जैसी रोशनी होती है दीपक से, ऐसे आए स्वयं में ज्ञान प्रकाश भर लें एक सुंदर दीप प्रज्वलन के माध्यम से, इस भट्टी का आगाज कर लें। तो अब सुंदर दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम विधिवत भट्टी का उद्घाटन करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, आदरणीय प्रताप भाई जी, शांता देवी, सुमन बहन जी, सरिता बहन जी, संजय भाई, हमारी सभी टीचर्स बहने मंच पर आएंगे, रूपा बहन जी, कल्पना बहन जी, डॉक्टर सचिन परब जी, आप भी मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलन में शरीक होंगे। दीपा बहन जी भी मंच पर आ जाएं, सुनैना बहन, केवाली बहन, और आप सब भी आज मोबाइल का सुंदर इस्तेमाल करें। अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपना मोबाइल निकाल लें और उसकी टॉर्च चला लें। इस दीप प्रज्वलन में आप अपने मोबाइल के टॉर्च के साथ सम्मिलित होंगे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर सुंदर दीप प्रज्वलन करते हुए संकल्प लेंगे आत्म ज्योति के जगे रहने का और दीपराज बाबा के अंग संग रहने का।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
आत्मदीप सदा जलते रहें, जगमगाते रहें, हम बाबा को और बाबा हमें याद आते रहें। जब तक जीवन है दुआ है हमारी कि आप यूं ही ज्ञान का प्रकाश चहों ओर फैलाते रहें। सुंदर दीप प्रज्वलन, दीपक सुंदर प्रेरणा देता हुआ, दीपक औरों के लिए जलता है औरों से नहीं जलता। हमें भी औरों के लिए जलना है, औरों को प्रकाश देना है, बाबा की प्रत्यक्षता का ध्वज सारे संसार में फैलाना है। इसी संकल्प के साथ आइए चलते हैं उस महान विभूति की ओर जो भागे भागे शांतिवन से हम सबके बीच पहुंचे हैं। तो जोरदार तालियां तो आदरणीय भ्राता जी के लिए। मैं देखता हूं हमारे बड़ों का हम सबसे कितना प्यार है, कितना हमारी उन्नति के लिए उन्हें ख्याल है, वो कितना मातृवत पितृवत मामा बाबा के समान उनकी उपस्थिति का एक सुंदर एहसास हम सबको कराना चाहते हैं। अति व्यस्त होते हुए भी कभी भी व्यस्तता की बात नहीं करते हैं, ये महानता है। बड़ा वो जो छोटों को ये एहसास ना होने दे कि तुम छोटे हो। उनके साथ रहकर एक मित्र की भावना आती है, उनके साथ रहकर एक मार्गदर्शक की भावना आती है। ऐसी महान विभूति आदरणीय मृत्युंजय भाई जी जो ब्रह्मा कुमारी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं, साथ ही आप गवर्निंग मेंबर हैं RERF के, डायरेक्टर हैं क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है उसका, और साथ ही भ्राता जी के दिशा निर्देश में कितनी सारी सेवाएं, विजडम पार्क जो सुंदर बन रहा है, एक सचमुच नमूना है, एक सैंपल है जिसमें एक बहुत ही सुंदर लेजर शो 3D भ्राता जी को रहता कि कैसे हम नए तरीके से बाबा का जो ध्वज है हर एक दिल पर फहराएं। तो ऐसे हम सबके प्रेरणा मूर्ति आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन हम सब भाई बहनों को प्रदान करें। एक बार पुनः हम करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर पल शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, उड़ने वाले, उड़ाने वाले और शांति दुनिया को स्थापित करने वाले, शांति धाम मुक्ति धाम में सबका गेट खोल करके आवाहन करने वाले आप सभी विशेष आत्माओं को ज्ञान सरोवर तपोभूमि में भट्टी करने के लिए, मन की मौन को धारण करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तपस्या की शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक स्थानों से आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, सुमन बहन, रूपेश भाई, संजय भाई, अन्य बहने, आप सबको भी मैं अपने दिल से दुबार और ओम शांति पुनः। मुझे बहुत खुशी है आप सभी दूर दूर से बाबा के घर में इस गर्मी के सीजन में आकर के तपस्या करने का प्लान बना के आए, और इस तपस्या में अपने आप को सिद्धि स्वरूप अनुभव करना, संकल्प का साकार होने का अनुभव करना, हर संकल्प व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाए, श्रेष्ठ संकल्प का प्रकाश सबको मिले, ऐसी संकल्प शक्ति को बढ़ाए, ऐसी संस्कार बढ़ाए जिस संस्कार को देखते हुए संसार परिवर्तन होने के लिए, अनुकरण करने के लिए, आदर्श का अनुभव करने के लिए आप सबका संस्कार प्रेरणा स्रोत बने, दशा और दिशा देने वाले बने, ऐसी संस्कार वाले बने, आपका चेहरे देखकर के दूसरों को खुशी मिले, जिसे हम छोटे बच्चों को देखकर के खुशी व आनंद व अपनत्व का अनुभव करते हैं, ऐसे हरेक तपस्वी आत्मा का, त्यागी आत्मा का, योगी आत्मा का, ज्ञानी आत्मा का, बाप दादा समान सदा फरिश्ता उड़ती कला वाले आत्माओं को देख करके उनको भी स्वयं आत्माभिमानी बने, ज्ञानवान बने, तपस्वी बने, उनका भी जीवन में अनेक बंधनों से, पापों से, भय से, दुख से मुक्त होकर के सदा फरिश्ता के रूप अनुभव कर सके, क्योंकि यह संगम युग अल्प आयु में का अल्प समय में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा को ही अपना साथी बना सकता है, दुनिया को परिवर्तन कर सकता है, आपकी परिवर्तन को लेकर के दुनिया स्वयं परिवर्तन हो जाए, ऐसी एक एग्जाम्पल सैंपल और एग्जाम्पल बने, आपको लाइट एंड वाइट हाउस बनकर के दूसरों को दिशा और दशा दिखावे। ऐसी करने के लिए आप सभी अपने अपने स्थानों से उधर भी योग करते हैं, परंतु मधुबन अवतरित भूमि है, ज्ञान भूमि है, योग भूमि है, तपस्या भूमि है, सिद्धि स्वरूप भूमि है। ऐसे सिद्धि स्वरूप स्थल पर आकर के आप तपस्या करने के लिए संकल्प किया, इसके लिए अपनी तरफ से समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत वधाई वधाई वधाई। अभी तो सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा क्या है मालूम है, तपस्या का महत्व मालूम है, ज्ञान मालूम है, कर्मों के गुह्य गति को भी मालूम है, और संकल्पों का परिणाम को भी मालूम है, और संस्कार का प्रभाव को भी मालूम है। इन सभी मालूम होने के बाद में हमारा जीवन, हमारा संकल्प, हमारा कर्म, हमारा संबंध, हमारा प्राप्ति, सब कुछ को जानने के बाद में सदा उड़ती कला होना चाहिए। दुनिया तो फिर भी अज्ञानी है और अनेक परिस्थिति से गुजर रहा है, युद्ध की वातावरण दुनिया में भी है, और कई बार ब्राह्मण लोगों के जीवन में भी युद्ध नहीं, मानसिक युद्ध करते हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं, संकल्पों का युद्ध करते हैं, कर्मों का युद्ध करते हैं, लालच का युद्ध करते हैं, और कोई न कोई मानसिक दुर्बलता का परिणाम स्वरूप खुद भी दुखी है, दूसरों को दुखी करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कहीं न कहीं ज्ञान का कमी है, वह तपस्या का कमी है, वह धारणा में कोई न कोई टूट गया, और श्रीमत को फॉलो करने में मिसिंग है। इसके लिए उनके जीवन में कोई न कोई युद्ध अर्थात एक विरोधात्मक जीवन और व्यर्थ संकल्पों का रचना रहता। परंतु आप मधुबन में आए, शांतिवन और ज्ञान सरोवर इन किसी भी स्थान पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली इन बातों को मुक्ति होना चाहिए। इसके लिए अपना मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाना, मस्तिष्क को ज्ञान स्थल बनाना, मस्तिष्क को योग स्थल बनाना, मस्तिष्क को प्रेम स्थल बनाना, मस्तिष्क को एक प्रेरणा स्थल बनाना, मस्तिष्क को दिव्यता का दर्शाने वाले स्थल बने। इसके लिए बाबा कहते हैं सदा केयरफुल रहेगा तो चेयरफुल बनेगा, चेयरफुल पीसफुल एंड ब्लिसफुल का अनुभव करे, खुद को भी अनुभव करे, दूसरों को भी अनुभव कराए, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहा जाता है। अपने चेहरे से ही अपना धारणा सिद्ध होता है, अपने चेहरे से ही अपने संकल्प को सिद्ध हो सकता है, अपने चेहरे से ही दूसरों को अपना भविष्य दर्श। बाबा कहते हैं आपका फ्यूचर को देख करके फ्यूचर अनुभव करें, ऐसा फ्यूचर को दर्शाने वाले मौन में की भाषा में, संकल्प की भाषा में व परिस्था की भाषा में दूसरों को ज्ञान का प्रेरणा देने वाले। मुझे एक दिन का अनुभव है, 1968 में मैं पहले बार ज्ञान में आया था बेंगलोर में। उस समय बाबा ने अनेक मुरली में कहा आपका दृष्टि से सृष्टि, परंतु हमने उसी दिन का अनुभव, हमारा जो टीचर कहो दादिया कहो, दादी हृदय पुष्पा दादी थे, बेंगलोर में एक छोटा सा कमरे में क्लास होता था, हम उसको देखते ही मुझे कुछ ही क्षण के अंदर एक नया शक्ति का अनुभव हुआ, आत्माभिमानी का अनुभव हुआ, कुछ पवित्रता का अनुभव हुआ, श्रेष्ठ संकल्प का अनुभव हुआ। उस दिन से लेकर के आज दिन तक मैं बाबा का बच्चा बनाऊ, गॉडली स्टूडेंट बनाऊ, योगी बनाऊ, और जो भी सेवाएं हम करते हैं बाबा का समर्पित करते हैं, बाबा प्रेरित करता है, बाबा सहयोग देता है। अब इन सभी बातों को देखते हुए साक्षी होकर के देखता हूँ और बाबा को साथी बना करके चलता हूँ। बाबा का जब साथी है, हर प्रकार का संबंध बाबा के साथ होता है, तो ऑटोमेटिकली कभी फेल्यूर के प्रश्न नहीं, युद्ध के प्रश्न नहीं, द्वंद्वता के प्रश्न नहीं, सदा खुशी और उमंग और उत्साह रहता है। इसके लिए सदा उमंग और उत्साह में रहने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभव करते। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के समय में तीन वरदान देके गए, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में कहाँ तक हमने धारण किया, कहाँ तक अभ्यासी बना, कहाँ तक इसका संपूर्णता की ओर बढ़े, हमको अपने आप को चेक करें। दादी प्रकाशमणि जी सदैव कहते थे निमित्त भाव निर्मल चित्त निर्माण कार्य, नम्रता भी है रचनात्मक भी है निर्माण में। इसके लिए दादी ने भी तीन शब्दों में अपने ज्ञान का अनुभव का तपस्या का सार तीन शब्दों में बोल के गए। ऐसी दादी जानकी दादी सदैव तीन शब्द मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परिस्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, उसका रोम रोम में बाबा दिखाई देता था, बाबा को दर्शाते थे। इसके लिए मेरा बाबा ऐसे कहने से ऑटोमेटिकली उनके जीवन का वो प्रकंपन, वाइब्रेशन, वो शांति, वो एकता, वो प्रेम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता था। इसके लिए हमारे जीवन में भी देखते लोगों को ये अनुभव करे, ये खुदा की बच्चे, खुदा के वारिसदार हैं, खुदा का रचना है, खुदा का मार्गदर्शन करने वाले, ये अनुभव होगा तो मेरा तेरा भाव सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि बातें वो संपूर्ण खत्म हो जाएगा। सदा वो लोग भी अनुभव करेंगे ये तो कोई फरिश्ता ऊपर से आए हुए, ये फरिश्ता को देने के लिए आया, हम तो लेने के लिए नहीं देने के लिए आया। फरिश्ता क्यों आता है? कुछ देने के लिए आया, कुछ मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ मदद करने के लिए, कुछ विचारों को परिवर्तन करने, कुछ चीजों से मुक्त करने के लिए। कोई भी प्रकार का बंधन है, चाहे मानसिक व शारीरिक व आर्थिक व कोई परिस्थिति का, उससे मुक्त करने के लिए आए। ऐसी मुक्ति दिलाने के लिए हमारा जीवन है, ऐसे जीवन दर्शाने वाले को बाबा ऊपर से वरदान वर्षा करता है, सदा आह्वान करता है। और आपको देख करके दुनिया में भी उनको भी दुख दर्द दूर होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में दुख तो बढ़ते जा रहे, पाप भी बढ़ते जा रहे, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे, हिंसा बढ़ते जा रहे, विविधता के अंदर एकता नहीं है। इसके लिए बाबा ने बच्चों को एक नया जन्म देकर के अवतरित आत्मा बनाया, परिस्थात्मा बनाया, आपका देख करके नया दुनिया का याद आना चाहिए। हम लोग इस साल आजादी के अमृत महोत्सव बना रहे, परंतु अमृत महोत्सव केवल अपने लिए व एक उत्सव के कारण व हीरो को वर्षिप करने के नहीं है। इस अमृत महोत्सव से आगे हम स्वर्णिम भारत की ओर ले जाए। स्वर्णिम भारत केवल नदियों से, पहाड़ों से, प्रकृति से, पर्यावरण से नहीं है, हर एक व्यक्ति का जीवन से बन सकता है। देवताओं से स्वर्णिम भारत बनता है, उनकी लाइफस्टाइल से बनता है, उनके विचारों से बनता है, उनके जीवन शैली से बनता है, उनके कर्तव्यों से बनता है। ऐसी कर्तव्य उनके जीवन में एक डीप इम्प्रेशन क्रिएट करे, ऐसी इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए दूसरे कोई नहीं, बाबा ने हम लोगों को ही निमित्त बनाया, हम लोगों को ये वर्षा दिया, हम लोगों को ये कारण दिया। इसी कारण से उस वरदानों को भी याद करते हुए अपने भविष्य, सो विश्व का भविष्य और भारत का भविष्य इसमें समाया हुआ। मुझे आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है, हर एक आत्मा इधर आकर के उस स्थिति को बना करके जाएंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करने के प्रतिनिधि बन करके जाएंगे, बाबा का जो भी बचा हुआ कार्य है, बचा हुआ शिक्षा देने के लिए कहीं न कहीं स्थान में संदेश देने के लिए हम सभी निमित्त है, वो पूर्ण होकर के आने वाले दिन में किसका दिन होगा? ब्राह्मणों का दिन होगा, ब्रह्म कुमार कुमारियों का दिन होगा, श्वेत वस्त्रधारियों का दिन होगा, अर्थात ब्राह्मण कुल का दिन होगा। आने वाले दिन आप सबको बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपका जीवन को देख करके वो लोग जीवन में साक्षात्कार का अनुभव कर सकते हैं आने वाले दिन में। जैसे हम पुराने दादियों को देख करके बाबा को पहचाना, कर्तव्य को पहचाना, अपने लक्ष्य को पहचाना, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना, ऐसे ही अभी समाज में और भी बहुत कठिन परिस्थितियां आने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति में भी खुश रहना, ऐसी परिस्थिति में निश्चिंत रहना, ऐसी परिस्थिति में एकाग्र होकर के चलना, उस परिस्थिति में भी एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा अनुभव करना, ऐसा करने कराने वाले आप सबको मेरे दिल से बधाई 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 और माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
हम सबको बधाई देने के लिए और माया की विदाई जो थोड़ी बहुत रह गई है इस तीन दिनों की भट्टी में, विदाई संपूर्ण रूप से देंगे। और भ्राता जी ने जो आशीर्वचन हमें दिया है, जो सुंदर शिक्षाएं दी हैं, हम एक हाथ हिलाकर अश्योर करें भाई साहब को कि भाई साहब आपने जो भी हमें कहा है हम जरूर उसे अमल में लाएंगे, उस पर गहराई से पुरुषार्थ करेंगे, अपना ऐसा ही जीवन बनाकर जाएंगे जो प्यारे बाबा हमारे चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष हों।